हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहाँ उस मोबाइल शोरूम से निकलकर ऋषभ सीधा समर की कोचिंग सेंटर पहुँचा। उस वक्त समर अपनी क्लासेस ले रहा था, इसलिए उसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ऋषभ की कार कोचिंग सेंटर के गेट पर रुकी। ड्राइवर को वहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहकर ऋषभ कार से बाहर निकला और दरवाजे से अंदर आया। लेकिन अंदर जाने से पहले उसने वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से समर के बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने ऋषभ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कुछ सोचते हुए कहा, कौन है आप और समर सर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उनके स्टूडेंट तो नहीं लगते? गार्ड के सवाल से ऋषभ और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, एक मिनट, क्या कहा आपने? मैं तो एक लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। समर नाम का कोई सर भी है क्या यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तुम हो कौन ये बताओ पहले। जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो इतनी कम उम्र का लड़का यहाँ टीचर है और दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो फिर तुम आखिर उससे मिलने क्यों आए हो? ऋषभ ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे पता है और उसी समर से मिलना है। आप बस मुझे ये बताइए, इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? ऋषभ नहीं चाहता था कि गार्ड उस पर शक करे और उसे समर से मिलने ना दे। ऋषभ के दोबारा पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड ने एक तरफ इशारा किया। ऋषभ गार्ड को धन्यवाद कहकर तुरंत उस तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे सीधे क्लास में जाते देख गार्ड पीछे से चिल्लाया, अरे मिस्टर, एक मिनट रुको, अभी ऐसे क्लासेस के बीच में आप उससे नहीं मिल सकते। गार्ड के पीछे आने पर ऋषभ मजबूरन रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, अरे लेकिन मुझे उससे मिलना है और एक जरूरी बात भी करनी है। गार्ड ऋषभ के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, हाँ ठीक है, कर लेना अपनी जरूरी बात, लेकिन जब वो क्लासेस खत्म करके क्लास से बाहर निकले तब तक यहीं रुककर उनका इंतजार करो। ऋषभ ने गार्ड को घूरते हुए कहा, ऋषभ खन्ना ने किसी का भी इंतजार करना नहीं सीखा है, इसलिए ये लीजिए और हटिए मेरे रास्ते से। इतना बोलते हुए ऋषभ ने अपनी जेब से 500 के कुछ नोट निकालकर गार्ड की तरफ बढ़ा दिए। इधर उधर देखते हुए गार्ड ने जल्दी से पैसे लपके और अपनी जेब में रखते हुए किनारे हट गया। रास्ते से हटते ही ऋषभ तुरंत आगे बढ़ गया और सीधा उस क्लास की तरफ बढ़ गया जहां समर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। ऋषभ खुद भी उसे पढ़ाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस कमरे के दरवाजे पर ही रुक गया, दरवाजे से 2 कदम बाहर। वहां से खड़े होकर वो अंदर पढ़ाते हुए समर की तरफ देखने लगा। समर का पूरा ध्यान दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड पर था और वो ब्लैक स्केच से कुछ लिखते हुए स्टूडेंट्स को समझा रहा था। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान भी उस व्हाइट बोर्ड पर था। ऋषभ ने अपने दोनों हाथ बांधकर दरवाजे के सहारे टेक लगाकर वहां खड़ा हो गया और अंदर की तरफ देखने लगा। ऋषभ ने कुछ नहीं किया, ना ही उसका नाम लेकर पुकारा और ना ही क्लासरूम के अंदर उससे मिलने गया। समर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने में व्यस्त था, इसलिए उसने भी दरवाजे की तरफ नहीं देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपना काम पूरा किया, सामने घूमते हुए उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो ऋषभ को देखकर रुक गया। उसे ऋषभ के वहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और मन में कहा, नहीं नहीं, ऋषभ वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो। मन में इतना कहते हुए समर ने अपनी आंखें खोली और फिर से दरवाजे की तरफ देखा। इस बार उसे मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर हाय बोलता हुआ ऋषभ नजर आया। उसने अपने हमेशा के जैसे नॉर्मल कपड़े, जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन आज वो लेदर या डेनिम जैकेट नहीं पहने हुए था। उसके बाएं हाथ में इंजरी की वजह से काफी बड़ा बैंडेज लगा हुआ था और इसी वजह से वो फुल स्लीव्स कपड़े नहीं पहन पा रहा था। ऋषभ के हाथ के बैंडेज पर नजर जाते ही समर को यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। ऋषभ सच में वहां उसके क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ये बात समझ में आते ही समर को झटका लगा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, यू ऑल कैन कंप्लीट दिस, मैं बस 5 मिनट में आया। सारे स्टूडेंट्स ने हाँ में सिर हिलाया। समर वहां से दरवाजे की तरफ गया और ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर लाया और क्लासरूम के किनारे लाकर बोला, ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज भी किसी लड़की की इंसल्ट करने के लिए आए हो क्या? या फिर कोई? ऋषभ ने आंखों में चमक के साथ कहा, नहीं, आज तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। समर इधर उधर देखकर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोला, What do you mean by मुझसे मिलने? और मुझसे मिलना कौन सा इतना जरूरी था? अभी तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम्हारे हाथ की चोट भी तो ठीक नहीं हुई है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। और यहाँ? ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया, अरे क्यों नहीं जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी, मतलब मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी नहीं है और फिर तुमसे कॉन्टैक्ट कैसे करूंगा मैं, मतलब अगर कोई जरूरी होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी ना। समर ने बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा तो बस ये सोचकर तुम यहाँ पर आ गए? ऋषभ ने बताया, हाँ क्योंकि आज ही मैंने अपने लिए मोबाइल फोन खरीदा ना, तभी मुझे याद आया कि तुम्हारा भी तो मोबाइल फोन उन लोगों ने छीन लिया था और तुम्हें भी सेम प्रॉब्लम हो रही होगी मेरी तरह। समर ने कहा, नहीं इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा मतलब हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन फिर भी काम चल रहा है और वैसे भी मैं इतनी जल्दी नया सेल फोन कैसे ले सकता हूँ। ये बात बोलते हुए समर का मुंह जरा उदास हो गया और वो थोड़ा मायूस नजर आ रहा था। उसे मायूस देखकर ऋषभ ने पूछा, अरे क्यों नहीं ले सकते? एक मिनट, पैसों की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। समर कंफ्यूज होकर पूछा, और क्यों, तुम मुझे क्यों नया फोन दिलाओगे? ऋषभ ने बात संभालते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है बस ऐसे ही हेल्प, मैं बस तुम्हारी मदद कर देता हूँ और वैसे भी फ्री नहीं दे रहा हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब तुम वापस कर देना। समर ने उसके हेल्प लेने से मना करते हुए कहा, नहीं मुझे अभी इतनी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, और वैसे भी हो सकता है हमारे पुराने फोन ही वापस मिल जाएं। वो इंस्पेक्टर ना, वो भाई को जानता भी है, उसका फोन कॉल आया था भाई के पास, तो हो सकता है इसकी भी उम्मीद है, अभी तो बस इसीलिए मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी नया फोन लेने में। ऋषभ ने कहा, अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गया, तुम बहुत ही खुददार टाइप के इंसान हो और किसी की भी हेल्प नहीं लोगे, नहीं तो तुम अपने भाई से भी बोल सकते थे नए मोबाइल फोन के लिए, वो तुम्हें आसानी से दिला सकता है, आखिर उसकी अच्छी खासी सैलरी है। समर ने आराम से पूरी बात ऋषभ को बताते हुए कहा, हाँ शायद अगर मैं उनसे बोलूंगा तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे नहीं बोलना चाहता, वो पहले ही इतने स्ट्रेस में रहते हैं घर के खर्चों को लेकर, ऐसे में अगर मैं भी उनसे डिमांड करूंगा तो उनकी टेंशन और बढ़ जाएगी ना, इसलिए कोई बात नहीं मैं थोड़े दिन वेट कर लेता हूँ, अगर पुराना फोन नहीं मिला तो फिर मैं अपनी सैलरी से EMI पर नया फोन ले लूंगा। उसकी बातें सुनकर ऋषभ थोड़ा सोच में पड़ गया, उसे समझ में आया कि मिडिल क्लास लोगों के अलग स्ट्रगल होते हैं, वो आज तक ऐसी लग्जूरियस लाइफ जीता आया है जहाँ उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, जो कुछ भी वो मांगता है उसे आसानी से मिल जाता है, लेकिन समर की लाइफ ऐसी नहीं है और ज्यादातर लोगों की नहीं होती है, ये उसे समझ आ रहा था। इसके अलावा समर उससे इतना छोटा होकर भी कितना ज्यादा समझदार है इसकी उम्मीद ऋषभ को नहीं थी, इसलिए वो बिना पलके झपकाए बहुत ही अद्भुत नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। ये सब सोचते हुए उसके मुंह से निकला, ओ वाओ समर, यू आर जस्ट अमेजिंग। समर ने हाथ से इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या किया मैंने?
ऋषभ ने बात बदलते हुए पूछा, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे तुमसे बात करनी होगी या कॉन्टैक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? समर ने कहा, तुम्हें मुझसे भला ऐसी क्या बात करनी है और क्यों? ऋषभ ने थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहा, क्यों का क्या मतलब है, हम बात नहीं कर सकते क्या? और वैसे भी मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी, भले ही तुम्हें चोट नहीं आई लेकिन उस इंसिडेंट से मेंटली तो डिस्टर्ब हुए होंगे ना तुम, मैं बस इसी बारे में पूछना चाहता था। समर ने बताया, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, और वैसे भी अब हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मेरे भाई के नंबर पर कॉल कर सकते हो, उनका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? उसके फ्रेंड्स बोलने पर ऋषभ ने कहा, क्या सिर्फ फ्रेंड, मुझे तो लगा था हम फ्रेंड्स से ज्यादा हैं। समर घबराहट में थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय मोर देन फ्रेंड्स, रियली तुम क्या बोल रहे हो ऋषभ? ऋषभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर समर को रोकते हुए कहा, अरे अरे रिलैक्स, मैं तो बस ये बोल रहा था कि फ्रेंड्स के साथ साथ हम रिलेटिव्स भी तो हैं, नाम भूल गए क्या तुम? मेरी बहन और तुम्हारे भाई की शादी भी तो होने वाली है ना, तो एक वो भी रिश्ता लगता है हमारा। ऋषभ की व्याख्या सुनकर समर ने राहत की सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी क्लासरूम से आती हुई तेज आवाज सुनकर समर ने कहा, ठीक है, तुम बाद में भाई के नंबर पर कॉल कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुककर बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ की जो ओनर हैं वो नाराज़ हो जाएंगे अगर उन्होंने मुझे ऐसे तुमसे बात करते हुए देख लिया, और वो मुझे बच्चों को पढ़ाने की सैलरी देते हैं, इसलिए अगर उस टाइम में मैं अपने पर्सनल दोस्तों से बातचीत करूँगा तो उसमें उनका टाइम वेस्ट होगा ना। क्रमशः